તારીખ 8-10-1994 શ્રી સમયસર કલશટીકા શ્લોક નંબર 181 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 75.
મોક્ષ માને સર્વ પ્રકારથી દુઃખ મુક્ત હોના, જન્મ મરણ થી મુક્ત હોના, સભી પ્રકાર કે દૂષિત પરિણામો થી ભી મુક્ત હોના, ઉસી કો મોક્ષ કહેતે હૈ. और इनके नियमित जो कर्म गण है उससे मोक्ष मिला, उसको भी मोक्ष कहते हैं. मोक्ष का कारण कैसा है? मोक्ष का कारण जैसा है वैसा नियम कहते हैं. नियम प्रज्ञा क्षेत्री आत्मकर्म उभय से અંતમ સંધિ બંધે વિ પ્રકૃતિ. આત્મા કે પરિણામો મે જિસ પ્રકાર કે મોક્ષ માર્ગ કી ખૂબી હૈ, યાને મોક્ષ માર્ગ કી જો અંદરૂની બાત હૈ, ઉસી કો આચાર્ય મહારાજ બતા રહે હૈ કે વસ્તુ સ્વરૂપ સે પ્રગટ હૈ. जो आत्मा के अनुभव, आत्मा के शुद्ध स्वरूप अनुभव समर्पण से परिणमा हुआ जीव का ज्ञान गुण वही है सैनिक. वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप से ये बात प्रकट है कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप अनुभव समर्पणा जिसमें है, आत्मस्वरूप का अनुभव करने में जो समर्थ है, इस जीव का ज्ञान गुण परिणमन करता हुआ जीव का ज्ञान गुण वही है सैनिक. ज्ञान गुण माने ज्ञान अकेला नहीं कह सकते, ज्ञान गुण लिया है यहाँ. प्रज्ञा का अर्थ क्या है, ज्ञान ने क्या है, ज्ञान गुण क्या है. जो ज्ञान उनका वेदन करता है, ऐसा जो ज्ञान का गुण है वही छैनी का रूप धारण करता है, उसको छैनी की उपमा दी जा सकती है. दूसरे प्रकार के ज्ञान को यहाँ छैनी प्रज्ञा छैनी नहीं कहते. ज्ञान है तो प्रज्ञा है, प्रज्ञा है तो ज्ञान है. किंतु यहाँ पर मोक्ष का कारणभूत प्रज्ञा कैसी होती है, मोक्ष का कारणभूत प्रज्ञा छैनी कैसी होती है, कि जो ज्ञान स्वयं का वेदन करता है तो संवेदन रूप से वेद्य वेदक रूप से करता है, वही प्रज्ञा छैनी करती है, वही ज्ञान प्रज्ञा छैनी है. किसी को ज्ञान गुण कहते हैं, क्योंकि ऐसा ही ज्ञान का गुण है, आत्मलाभ करने का गुण है. जैसे हम कोई औषधि दवाई खाते हैं तो इसका गुण क्या हुआ, कि रोग मिटा, ये इसका गुण है. वैसे ज्ञान का गुण क्या, ज्ञान का गुण वो कि वो राग को और आत्मा को भिन्न, बंध और आत्मा को भिन्न करे. कैसे भिन्न करे, कि स्वयं के स्वसंवेदन से भिन्न करे. अपने स्वसंवेदन के अलावा राग से बंध से भिन्न होने का और कोई उपाय है नहीं. इनकार के रूप में दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता. भावार्थ इस प्रकार है कि सामान्यतया जीव किसी वस्तु को छेदकर जो करते हैं तो शैनी के द्वारा करते हैं। जो कठिन पदार्थ है, लोहा जैसा पदार्थ होता है, लोहा होता है, सोना होता है, कठिन टुकड़ा जब करने में आता है तो शैनी का प्रयोग करने में आता है। अब गुजराती में मैंने शैनी कही थी। यहाँ भी जीव कर्म को छेद कर दो करना है। यहाँ भी जीव कर्म का अनादि संबंध है, उसको भिन्न भिन्न करना है। उनको दो रूप से छेदने के लिए स्वरूप अनुभव समर्थ ज्ञान रूप छैनी है, उसको दो करना है। उनको दो रूप छेदने के लिए स्वरूप का अनुभव में समर्थ ऐसा जो ज्ञान है, ज्ञान गुण है, कोई ज्ञान रूप इच्छा नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है। जो ज्ञान स्वरूप का अनुभव करे यानी अपना अनुभव करे, वही कर्म से कर्मबंध को छेदन कर सकने वाला ज्ञान है, कोई कर्मबंध से मुक्त होने वाला ज्ञान है। तीन काल तीन लोग में दूसरा कोई इलाज नहीं है, बंध से मुक्त होने का कोई इलाज नहीं है। और तो दूसरा कारण न हुआ न होगा, क्या लिखते हैं? भूत काल में अनंत काल में दूसरा कोई कारण हुआ नहीं मुक्त होने का, न हो गया भी अनंत काल में आने वाले। तो इससे क्या होता है कि जिसको मुक्त होना है उनको यही एक प्रयत्न प्रयास पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारी पूरी शक्ति इसी काम में हमें लगा देनी चाहिए। दूसरे दूसरे प्रकार से हम कुछ मुक्त होने का इलाज करने जाएंगे तो असफल रहेंगे, निष्फलता रखे सुबह और कुछ देने वाला नहीं है। जगत में जो कुछ अनेक प्रकार के संप्रदाय है, अनेक प्रकार के मत मतांतर है, इसका यही कारण है कि सही उपाय को नहीं जान करके, सही उपाय के विषय में अनजाना रह करके अपने मति कल्प राज है, विभिन्न प्रकार के उपाय को जो अजमाइश करते हैं लेकिन कोई सफल नहीं होते हैं। एक और तीन काल में परमार्थ का फल, परम प्रयोजन मुक्त होने का है, इसका एक ही उपाय है। वो तो उपाय जो नहीं जानते हैं तो दूसरे दूसरे उपाय में लग जाते हैं या अपनी मति कल्पना से दूसरे उपाय को कर लेते हैं। कोई कहे कि हम शास्त्र को पढ़े तो शास्त्र को क्यों पढ़े? अगर विज्ञान नहीं करना है, नहीं होता है तो शास्त्र की पढ़ाई किस काम की? हम तब करेंगे नहीं करें, उपवास करेंगे नहीं करें। तो अगर हम विज्ञान नहीं करते हैं तो ये तप और उपवास किस काम का? हम पूजा भक्ति करेंगे नहीं करें? अगर हम विज्ञान नहीं कर रहे, मुक्त होने का उपाय नहीं करते हैं तो ये पूजा भक्ति किस काम की? हम दयादान करते हैं वो करें कि नहीं करें? प्रश्न तो ये आता है कि वो कर रहे हैं वो करें कि नहीं करें? तो मुक्त होने का उपाय तो ये भी है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने में समर्थ ऐसे जो ज्ञान है वही एकमात्र उपाय है। उसी को करने के लिए जो कुछ करना है सत्र ऐसा ज्ञान को तैयार करने के लिए जो कुछ करना है सफल है, उसको छोड़ करके जो कुछ करना है तो अनंत काल कर चुके हैं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए हमारी समय शक्ति खरे उपाय में लगे और छोटे उपाय में नहीं लगे, इसलिए इसका प्रयोजन है। जानता है इसका प्रयोजन है कि हमारा कोई भी प्रयास हो ये हमारे स्वरूप का अनुभव के लिए ही हमारा प्रयास होना चाहिए, दूसरा कोई हेतु होना नहीं चाहिए। इसलिए कहा कि और तो दूसरा कारण न हुआ न होगा मोक्ष के लिए। ऐसी प्रज्ञा श्रेणी जिस प्रकार छेद कर दो करती है उस प्रकार कहते हैं तो प्रज्ञा श्रेणी किस प्रकार से प्रजमन करती है प्रज्ञा उस प्रकार को कहते हैं। तो आत्म कर्म उभयस्य अंत संधि निपत संधे निपतति उतना प्रकार करेंगे। आत्म कर्म उभयस्य आत्मा चेतना मात्र द्रव्य को आत्मा कहते हैं। चेतना मात्र द्रव्य को आत्मा कहते हैं। चेतना मात्र को छोड़कर जो रागादि परिणाम है देहादि कर्मादि संयोग है उसको हम आत्मा नहीं कहते हैं। चेतना मात्र द्रव्य को आत्मा कहते हैं। इससे सभी विभाव को छोड़ करके बात है। भले ही रागादि परिणाम आत्मा के अवस्था में है फिर भी उसको आत्मद्रव्य नहीं कहते हैं। उसको यह बंध कहेंगे उसको आत्मद्रव्य नहीं कह करके बंध कहेंगे। आत्मा चेतना मात्र द्रव्य कर्म कुल का पिंड अथवा मोहराग शुद्ध परिणति ऐसे हैं। उभय माने दो वस्तु है एक आत्मा चेतना द्रव्य है कर्म कुल का पिंड है वो दूसरी वस्तु है अथवा कर्म कुल का पिंड नहीं लेकर के मोहराग अशुद्ध परिणति दोनों एक प्रकार में दिए गए फिर भी वेद ज्ञान के प्रकरण में दोनों एक खाते में खटाना चाहिए। कर्म है भाव कर्म है हमको तो दोनों से भिन्न होना है तो दोनों को एक खाते में डाले। व्यवसाय में हमारे अकाउंट में क्या करते हैं ऐसा काम रखते हैं कि नहीं रखते हैं है? इसका मतलब क्या है कि जो भी छोटे मोटे आने वाले खर्च होते हैं डालो इसमें डाल देते हैं ऐसे डालो इसमें इससे हमारा प्रयोजन नहीं है। यानी कि हम जिसको साथ में लेना नहीं चाहते हैं तुम सबको एक ही खाते में रखो कहते थे तो पर के खाते में जाता है क्या राजादी भाव जीव के परिणाम में होते हैं लेकिन वो जाते हैं पर के खाते में जाता है। लेकिन कब जाता है कि जीव बेलियान करता है तब जहां तक वेदियन नहीं करता है तो अपने खाते में खटाता है मैंने राग किया मैंने वो किया। पांच नंबर का उतना बढ़ते एक समय में मैं चिदानंद परिपूर्ण हूं ऐसी प्रतीति यह भव के नाश का कारण है। भव के नाश का तो यह मोक्ष का कारण यह चेतना मात्र आत्मद्रव कारण है। तो चेतना मात्र को गुरुदेव अपनी भाषा में कहते हैं कि एक समय में माने कौन से एक समय में वर्तमान एक समय वर्तमान समय में मैं साथ करता हूँ किस प्रकार से साथ करता हूँ अभी ही वर्तमान में मैं अभी ही मैं चिदानंद परिपूर्ण हूँ ऐसी प्रतीति भाव के नाश का कारण है। ऐसी प्रतीति होने के बाद अंतराल रहता है, ऐसी प्रतीति होने बाद ज्ञानी को भी अंतराल रहता है। वो पढ़ते 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 मैंने पढ़ते पक्ष में जाता है, पढ़ते पक्ष में नहीं आता, तो पढ़ते पक्ष में जाता है। होता है जीव की अवस्था में, लेकिन वो पर के पक्ष में जाते हैं, पर के साथ पर खाते में जाते हैं, अपने स्वयं में वो खटाने में नहीं आता। कहते हैं कि आत्मा माने चेतना मात्र ग्रह परिपूर्ण चिदानंद रूप परिपूर्ण ग्रह सर्व बुद्ध जल का पिंड अथवा ऐसे है विभिन्न दो वस्तु है, एक आत्मा और एक पर सब लेकर ग्रह कर्म भाव कर्म और कर्म देना भी सब लेकर उनको यद्यपि एक क्षेत्रांगारूप है, क्या है शुद्ध करने से एक क्षेत्रांगारूप है, कर्मशुद्धल भी आत्मा के क्षेत्र में बैठा है, नवकर्म शरीर भी आत्मा के क्षेत्र के सामने मंद पर्याय रूप है, एक क्षेत्रांगारूप है और संयोग संबंध भी है, बने मेरे संयोग संबंध है, स्वभाव संबंध नहीं है, स्वरूप संबंध नहीं है, संयोग संबंध है। जैसे मेहमान हो कितना भी बड़ा हो लेकिन आखिर में मेहमान वो मेहमान ही रहता है, आते हैं लड़की के ससुर हो मेरा बोलते हैं ये बोलते हैं बहुत खाते बर्दाश्त करने में आते हैं, क्या सबसे ज्यादा घर वालों से भी ज्यादा घर वाले खाते को तो अस्तर में तो होता ही नहीं है, उसका तो घर वाला नहीं रहता, पराया हो जाता है। इतना बहुमान करने के बावजूद भी वो पराये हैं, वो पराये ही रहते हैं, कि मेहमान है ग्रह कर्म कर्म नो कर्म तीनों मेहमान है, शरीर मेहमान है कि नहीं है, मुदत लेके आया है विदाउट नोटिस चला जाएगा, कभी कोई नोटिस देता है कभी नहीं देता है, उसका कोई भरोसा नरेंद्र में भी देते समय चुनता है, भावकर में भी देते समय चुनता है, वो तो आने जाने वाले पदार्थ है, ये अपना स्वरूप बिल्कुल नहीं है। भले ही एक क्षेत्रागार रूप है, बंद पर्याय रूप है, अशुद्धत्व विकार रूप परिणमा है, कैसा है अशुद्ध पड़े से विकार रूप परिणमा है, तथा परस्पर संधि है, नहीं संधि नहीं हुआ है, संधि है मैंने ज्वाइंट है साथ है बीच में, सड़ंग नहीं है, नहीं संधि मैंने सड़ंग नहीं है, अगर एक द्रव्य रूप होता तो टुकड़ा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सांध है वही तो इसकी कमजोरी है, यहाँ से वो टूटेगा टूटेगा, ये संधि नहीं हुआ है, दो द्रव्यों का एक द्रव्य रूप नहीं हुआ है, वो तो हो ही रहा है हमेशा, राग भी आत्मा नहीं हुआ, कर्म से परमाणु भी आत्मा नहीं हुआ और शरीर भी आत्मा नहीं हुआ, हम कितना भी अपनत्व कर ले, हम कितना भी अपनत्व अनंत काल से कर करके अभी तक कर ही रहे हैं, फिर भी वो आत्मा होने वाला नहीं है, आत्मा रूप करने का हमारा उपचार बेकार है, प्रथा है है, क्या है, और ऐसा पुरुषार्थ करने से भी उसमें सफलता नहीं होती तो दुखी होएगा, निष्फलता का दुख आए बिना रहेगा नहीं। जो संयोगी पदार्थ अनित्य है, उस अनित्य पदार्थ में नित्यता का अगर हमें विश्वास है, प्रतीति है, तो यही प्रतीति, यही विश्वास हमको बुद्ध देने वाली चीज है। और अनित्यता में नित्यता स्थापित किया, यही हमारी गलती है, बड़ी गलती है, इससे दुख होने वाला है। मैं एक समय में चिदानंद परिपूर्ण हूँ, बिना किसी के अभी ही पूर्ण हूँ, निरालंब निरपेक्ष हूँ, किसी के आधार अवलंबन की मुझे कोई जरूरत नहीं। ऐसा स्वयं का अवलंबन ले तो सुख होने का कारण है। तो नित्य का अवलंबन है वो शांति का कारण है, सुख का कारण है। अनित्य का प्रतिथि और अवलंबन है दुख का कारण है, अशांति का कारण है। सीधा शांति अशांति का विज्ञान है। द्रव्य दो द्रव्यों का एक द्रव्य रूप नहीं हुआ है। ऐसा है जो बंध, ऐसा है जो संबंध। ज्ञान श्रेणी के प्रयत्न का स्थान ये जो संयोग है, वही ज्ञान की श्रेणी को रखने का स्थान। यहाँ से दो टुकड़ा होगा, जैसे कोई सांधा वाली चीज हो पर दो टुकड़ा करना हो तो सांधे सांधे से करो तो आसान है। तो कमजोरी यहाँ है, इसकी कमजोरी है तो वहां है। ऐसा हो जो ज्ञान श्रेणी के बैठने का स्थान, उसमें ज्ञान श्रेणी बैठती है और बैठे हुए छेद कर भिन्न करती है। फिर प्रज्ञा क्या काम करती है, तो अंतर्मुख होती है। प्रज्ञा अंतर्मुख होती है तो उनको बंद और ज्ञातमार साथ साथ रहे हुए संबंध रूप दिखते हैं और ये अंतर्मुख होकर के उनको अलग कर देती है, भिन्न अनुभव करती है। जो भिन्न अनुभव करता था वही ज्ञान अभी भिन्न अनुभव करने लगता है। कैसी है प्रज्ञा शिक्षिता? ज्ञानावरणीय कर्म का सूक्ष्म होने पर, मिथ्यात्व कर्म का नाश होने पर, शुद्ध चैतन्य स्वरूप में अत्यंत पैठन समर्थ है। सीता मैंने क्या धारदार है, अक्सर प्रदर्शिता है, उसकी धार बहुत है, बहुत सूक्ष्म धार है, तो सूक्ष्म संधि में वो बराबर काम करती है, ऐसा कहते हैं। तो वो किस प्रकार करती है, एक तो ज्ञानावरणी का क्षोभ होने पर संगी पंचेंद्रिय जीव का यह कार्य है, और संगी पंचेंद्रिय तक का क्षोभम ऐसे कार्य में लगता नहीं है। जो संगी पंचेंद्रिय है उसको ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभम ऐसा है कि वो अपने प्रयोजन को ठीक तरह समझ सकता है। अपने प्रयोजन को मतलब सुख दुख के प्रयोजन को ठीक कर सकता है। ये मेरा सुख का कारण है, मेरा दुख का कारण, गलती करे वो अलग बात है, लेकिन प्रयोजन को वो पकड़ता है, उसको कहते हैं ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभ होने पर। एक बात, अकेला ज्ञानावरणीय का क्षोभ के काम नहीं करता है। मिथ्यात्व कर्म का नाश होने पर, नाश मैंने उत्सव पहले उत्सव होता है, अनुदय भी कहते हैं, उदय का अभाव अनुदय, और उपशम को अभाव भी कहते हैं, क्योंकि उदय का अभाव हुआ है। तो जो मिथ्यात्व कर्म है या दर्शन मोह है, मिथ्यात्व कर्म में दर्शन मोह है और मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति दिए गए हैं, दोनों एक साथ नाश होने पर, अभाव होने पर, शुद्ध चैतन्य स्वरूप में अत्यंत ऐसी दशा में तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में लगते हैं,
ज्ञान पराधीन हो गया, वो विद्या का नाश नहीं हुआ, ज्ञान अपना काम करने में समझ नहीं हुआ।
तो उसमें क्या है, तो पहले मेरा ज्ञान का सेवक था तो अपने में काम करने में समर्थ हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन क्या अकेला ज्ञान काम नहीं करता है, जब सुखोपयोग होता है तो ये साथ दो काम होता है, एक तो ज्ञान भी काम करता है और एक श्रद्धा भी काम करती है, इसलिए कोई ज्ञान का एकांत करे तो एकांत सही नहीं है, अगर कोई ज्ञान का एकांत करे तो वो ज्ञान सही नहीं है, तो जानकारी वाला हो जाएगा, एकांत ज्ञान है वो क्या हो जाएगा, जानकारी वाला हो जाएगा, वो शास्त्र पढ़ते रहेगा, पढ़ते ही रहेगा। प्रतीति का क्या, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा हुई कि नहीं हुई, हुई एक काल में लेकिन हुई कि नहीं हुई वो तो बात है, और दुष्टात्मा तो वहां तक ले जाता है, तो लीनता के काल में प्रतीति होती है, तब प्रतीति होती है पहले, तो जब स्वरूप लीनता होती है तो प्रतीति होती है, तो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र एकाग्रता को तीनों होता है, इसलिए जो धर्म की परिभाषा है, मोक्ष मार्ग की परिभाषा है, उसको समय दर्शन ज्ञान चारित्रा नहीं मोक्ष मार्ग कहने में आया है, इसलिए कोई ऐसा कहे कि हमको श्रद्धा है इसलिए हमको धर्म की प्राप्ति है, भले ज्ञान चारित्र नहीं हो तो बात गलत है, कोई कहे कि हमें ज्ञान है, बस ज्ञान है इसलिए हमें धर्म की प्राप्ति है, हम दूसरे की बात नहीं समझते, तो नहीं करें, ज्ञान के साथ प्रकृति भी होती है और स्वरूप आचरण की लीनता भी होती है, तो कोई ऐसा कहे कि हमारा आचरण सिद्ध है, भले ही श्रद्धा ज्ञान हमको पकड़े में नहीं जाना है, हमको ज्ञान के पटले में नहीं जाना है, वैसा है कैसा है, हमको क्योंकि हमारा आचरण शुरू कर लिया है, कैसा भी नहीं होता है, तीनों एक साथ होता है, एक होवे और दूसरा दो नहीं होवे, या दो होवे और तीसरा एक नहीं होवे, ऐसा कभी नहीं होता, इसलिए के कारण ज्ञानावरणी कर्म का शोक होने पर और निजात कर्म का नाश होने पर शुद्ध चैतन्य स्वरूप में अत्यंत पैठन समर्थ है, भावार्थ जिस प्रकार है कि जिस प्रकार यद्यपि लोहासार के शनि अति शनि होती है तो भी संधि का विचार कर छेदने पर छेद कर दो करती है, लोहा के शैनी पैनी होती है फिर भी संधि को देख कर उनको टुकड़ा करने में आता है, सुप्रस्थान में ठीक उसी प्रकार यद्यपि समय दृष्टि जीव का ज्ञान अत्यंत तीक्ष्ण है, समय दृष्टि जीव का ज्ञान कैसा है, अत्यंत तीक्ष्ण है, अत्यंत सूक्ष्म है, चाहे शास्त्र का सूक्ष्म मत हो ज्यादा विभूति मुनि जैसी भी स्थिति हो सकती है, लेकिन अंतर में सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वभाव है, उसको ग्रहण करने में तो सूक्ष्मता उसका उसकी सूक्ष्मता समर्थ है, स्वरूप ग्रहण सूक्ष्म ऐसा जो स्वरूप उसको ग्रहण करने में जो समर्थ है, यही सम्यक सूक्ष्मता है, यही स्वाभाविक सूक्ष्मता है, और ऐसी सूक्ष्मता सम्यक दृष्टि को अवश्य अवश्य होती है, ऐसा हो सकता है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है और विद्वान नहीं होता है, क्या समय दृष्टि ज्ञानी होता है और विद्वान नहीं होता है, और विद्वान होता है इसमें कोई ज्ञानी होता ही है, ऐसा ये जरूरी नहीं। ज्ञानी विद्वान भी होता है और विद्वान जी भी होता है, और विद्वान है वो ज्ञानी होता ही ऐसा नहीं है कि विद्वत्ता है इसमें ज्ञानी बना आ जाए, वो बात नहीं है। विद्वत्ता कोई अलग चीज है, ज्ञानी बना कोई अलग चीज है। इसलिए इसका स्पष्टीकरण होना जरूरी है कि जिसको इस विषय में पूरी नजर नहीं है या नजर अच्छी तरह तैयार नहीं हुई है, गुजराती में नजर केवानी नहीं, तो अगले का सूक्ष्म ज्ञान में व्यामोहित हो जाता है। देखो इतना ज्ञान है, बहुत समझता है और समझा भी सकता है, इसलिए ज्ञानी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इस तरह से ज्ञानी की पहचान होती, ज्ञानी के पहचान होने का एक दूसरा ही पता है, और वो बात किया है चार को दूसरे नंबर के पत्र में लिया है। ज्ञानी और अज्ञानी में उदय को एक सबसे हो सकते हैं, नहीं है पर विद्वान है इसलिए भी ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी होने की बात को कुछ दूसरे होती है, इस तरह से ज्ञानी को समझा जाता है। दृष्टि जीव का ज्ञान अत्यंत तीक्ष्ण है, थोड़ा तीक्ष्ण नहीं है, कितना है, अत्यंत तीक्ष्ण है। क्यों? चिंतन वाला विकल्प है, सूक्ष्म विकल्प, जिसको शास्त्र में अंतर्जल्प कहते हैं, वो सूक्ष्म विकल्प होता है। चिंतन का आत्मस्वरूप का चिंतन का फिर भी ये ज्ञान का पर्याय नहीं है, फिर भी ये आत्मभाव नहीं है, अन्य भाव है। कहां से पता चलता है कि जिसकी जितना सूक्ष्म ज्ञान होता है उसको पता चलता है, तो कहता है कि एक कण को भी आत्मा में मिलावट करने देता भेद का विकल्प तो भेद रूप है, स्थूल है ही, लेकिन अभेद का विकल्प मिल है। मैं अभेद हूँ कभी पूर्ण हूँ, फिर भी विकल्प विकल्प है तो आत्मज्ञान नहीं है, ज्ञान का परिणाम नहीं है, कोई आपका परिणाम। कितनी सूक्ष्मता भीतर में जिसको नजर आती है तब वो भेद ज्ञान करके अनुभव को समझ होता है। तो उनको इस तरफ से अगर पहचाने तो अच्छा, उतना अंदर में सूक्ष्म प्रकार से काम करने वाला ज्ञानी होता है, तो उसके करने के देख करके उसको नमस्कार दे देना रहेगा। क्या काम करता है बेटा, क्या अद्भुत काम करता है, इस तरह से वो पहचाना जाता है। कोई बात किया है दृष्टि जीव का ज्ञान अत्यंत तीक्ष्ण है, कैसा ज्ञान, अत्यंत तीक्ष्ण है। मनुष्य का जीव की भूमिका में जब से प्रयोजन के विषय में ज्ञान होता है वहां से सूक्ष्मता की शुरुआत होती है और वो सूक्ष्मता की शुरुआत आगे बढ़ सकते परम प्रयोजन भूत अपना जो स्वरूप है उसको चिंतन के काल में भी जो ध्यान का काल बोला जाता है ध्यान करते हैं तो उसमें चिंतन चलता है। सूक्ष्म जो आत्म विकल्प है आत्मा का विकल्प है उसको भी वो चिंतन कर देते हैं ऐसा सूक्ष्म उपयोग हो जाता है तो ऐसा प्रयोजन का दृष्टिकोण जो जितना सूक्ष्म हो जाता है मनुष्य की भूमिका में अपनी भूमिका अनुसार का प्रयोजन देखना पड़ता है। अल्टीमेट जो प्रयोजन है वो तो वो है कि हम हमारे स्वरूप को प्राप्त करें और स्वरूप को छोड़ करके जो भी हमने अन्य प्रयोजन में भाव का अपने रूप ग्रहण हो रहा है उसका त्याग कर तो एक अल्टीमेट प्रयोजन हो गया। लेकिन जिस भी भूमिका में हम करेंगे भूमिका में भूमिका वाले होते नहीं हरेक की योग्यता अलग अलग है। उपदेश को शास्त्र में समस्त होता है लेकिन शास्त्र पढ़ने वाले मनुष्य को व्यक्तिगत उपदेश को अलग छाटने की प्रक्रिया करनी चाहिए चाहे वो स्वयं अपने आप करे या फिर सामूहिक बैठक सत्संग के दौरान करना वो पड़ेगा क्या हम कभी ऐसी चर्चा करते हैं विचार करते हैं तो गुरुदेव ने उनका उद्देश्य जो उनका हृदय समस्त था तो जब वो प्रदर्शन करते थे तो सारे समाज सुनिए तो किसी एक को उद्देश्य को व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं देगा प्रवचन दिया हमेशा दो प्रकार दो प्रकार से जाता था तो समाज में सुनने वाले एक साथ सैकड़ों हजार में बैठते उसको समस्तगत उपदेश का उदय करते हैं इस प्रकार का उपदेश का हम गोपालों के उसको व्यक्तिगत उपदेश देने का उपयोग कर सकता है सभा भर के उपदेश नहीं दे सकते लेकिन जो इनके परिचय में आए उनको उनको व्यक्तिगत उद्देश्य देते थे आपको ऐसा मार्गदर्शन होना चाहिए उनको जो उसकी योग्यता में वर्तमान योग्यता में जो बात थी उसमें से वो आगे ले जाते थे मार्गदर्शन दे जाते अब हम विचार करेंगे दोनों बात से हमें उसका तात्पर्य विचार है उसका सार क्या निकालेंगे क्योंकि शास्त्र की समस्त के रूप जैसे लिखा गया है व्यक्तिगत रूप जैसे भी लिखा गया है तो शास्त्री इसमें से क्या निकलना कि अगर हम हमें कोई ऐसा ज्ञानी मिले और व्यक्तिगत उपदेश का हमें लाभ प्राप्त हो तो ये तो बहुत परम सौभाग्य की बात है। तो ऐसा ऐसा दिमाग नहीं मिलता लेकिन जब समस्त के रूप जैसा सुनने का या प्राप्त करने का तो ये हमारी मनुष्य की जिम्मेवारी है कि इसमें व्यक्तिगत रूप से हमें उद्देश्य हमारे लिए अलग करना पड़ेगा। अगर ये कार्य हम नहीं कर पाते हैं तो हम कभी भी कितना भी स्वाध्याय करें सत्संग करें निष्फल हो जाएंगे। अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो हमें दूसरों की मदद लेनी चाहिए जैसे जैसे हमारे संपक्ष मनुष्य हो उनको प्रार्थना करे विनती करे देखिए हमारे काम की बात कोई आए तो आप ध्यान दिला हमारा ध्यान नहीं रहे तो आप ध्यान दिला हमारी योग्यता वैसे वैसे है अपनी योग्यता का निवेदन भी कर रहे और साथ साथ इसी योग्यता के अनुसार जो बात हो और ऊपर से जाती हो लक्ष्य नहीं जाता हो तो अपने जो सहयोगी होते हैं इस प्रकार से सत्संग किया जाता है, ऐसा कि गाथा लेकर के बैठे और पढ़ ले, सत्संग इस प्रकार से करना चाहिए। हमारा जो व्यक्तिगत प्रयोग है और हम जहाँ जिस योग्यता में खड़े हैं उस योग्यता से एक कदम भी हम कैसे आगे बढ़े और बिल्कुल एक कदम भी कैसे पीछे नहीं जाना हो वो कैसे हो सकता है, उसकी सावधानी रख करके अगर हम सत्संग करते हैं तो ये सत्संग व्यापार से है, वरना नाम सत्संग का है लेकिन वहाँ यथार्थता का अभाव तत्वज्ञान का अभ्यास करने वाले को सम्यक दर्शन होता भी है और नहीं भी होता है। जो यथार्थ अभ्यास करता है उसको होता है और होता भी है। जो अयथार्थ अभ्यास करते हैं उसको कभी सम्यक दर्शन होता नहीं, अभ्यास होता है सम्यक दर्शन नहीं होता है। ये बात अच्छी तरह समझना चाहिए किस तरह से सत्संग करते हैं, उनके स्वाध्याय करते हैं। अगर हम पुराने ढांचे में से नहीं निकले चाहे बात की विकृति तो हर प्रसंग में आती है, हर बात की विकृति आ सकती है। क्योंकि जो गुरुदेव को समझते थे गुरुदेव देते थे तो किसी भी एक सांस में लेकर बैठते थे और अपने प्रवचन सुनाते थे सब को, लेकिन भीतर में वो अभिप्राय रखते थे मैं तो मेरी आत्मा का स्वाध्याय करता हूँ। लोगों को ऐसा दिखने में आता कि गुरुदेव समाज को उपदेश दे रहे हैं, ये वास्तव में वो क्या करते थे कि प्रवचन के माध्यम से वो अपना स्वाध्याय करते थे। मोटे से करते थे, बोलने में मोटे से करते थे, ये मुख्य बात है। तो सुनना सुनाना हो कौन बात है, अब हम ही नकल कर रहे हैं, हम ही गुरुदेव के स्थान पर बैठ जाए पशु के हाथ पे और हम भी प्रवचन करने लग जाए, दूसरे को उनके देने लग जाए, तो हमारा सत्संग का प्रकार ठीक हमें हमको कैसे लाभ हुए हमारा अपना जय कैसे जय करना चाहिए। तो जो चलता हुई समय उसमें कहते हैं कि यद्यपि संयंत्र की भूमिका ज्ञान अत्यंत तुच्छ है तथापि जीव परम की है जो भीतर में संधि उसमें प्रवेश करने पर प्रथम तो बुद्धि जोड़कर छेद करता है, पहले तो वो बात बुद्धि में ज्ञान में आती है तो हमने छेद किया, बुद्धि जोकर वो बात होती है। व्यात्मता वैसे बुद्धि जोकर है, ज्ञान जोकर है, करुणानि की तरह ज्ञान जोकर नहीं है, परोक्ष है, ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष है। करुणानि योग में बात आएगी तो ज्ञाना वर्ण कर्म की प्रकृति होती है, घटना वर्ण प्रकृति होती है, लेकिन हमने तो न करने के परमाणु देखे, न प्रकृति देखी, न उनकी सत्ता देखी, न उनका उदय देखा, देखने में तो आता नहीं है। तो कुछ कर्म के अनुसार माने हैं तो हम स्वीकार करते हैं, कर्म के परमाणु कर्म के ज्ञान में कभी आते हैं, ऐसा अध्यात्म में नहीं है, ये कहने का अध्यात्म में ऐसा नहीं है। अध्यात्म में तो हम बराबर बुद्धि को लगाते हैं, बराबर समझते हैं, समझ करके प्रयोग करते हैं और प्रयोग में जो होता है उसका हमको ज्ञान समझ रहते हैं, हमारे बुद्धि बराबर उसमें कामयाब हो सकते हैं, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि हमें क्या पता बेज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम तो मैं आत्मा मैं कर्म नहीं मैं राज नहीं मैं आत्मा ऐसा हमको बार बार भाव आता है, लेकिन हम क्या जाने कि वैज्ञान है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वैज्ञान होता है कि नहीं होता है, अंदर संधि में प्रज्ञा से नहीं जानती है कि नहीं जानती है, प्रवेश करती है कि नहीं करती है, हम नहीं जानते, ऐसा नहीं है। बराबर पता चलता है अपने को, कुछ नहीं कहते हैं प्रथम का बुद्धि जो कर खेल कर जो करता है पश्चात सकल कर्म का क्षय होने से साक्षात शंकर बिंदन करता है वो मुक्त के काल में कहता है कि कहता है जीव कर्म का हमेशा संकेतन ये जो जीव कर्म का अंदर में संधि का बंध है संबंध है वो कहता है सूक्ष्म अति ही दुर्लभ संजय रूप है दुर्लभ मैंने जल्दी से लक्षण नहीं आए इतना सूक्ष्म है तो जिनको संधि नहीं दिखे तो ज्ञान जिसके पर्याय को कैसे पत्ते का वहां संजय रूप करना चाहते हैं संधि तो दिखने में आने चाहिए तो जो ज्ञान स्थूल है अंदर की संधि कर्म को देखने में नहीं आती जीव और राग की संधि नहीं दिखाई देती जीव को जिसको जीव और राग की संधि दिखाई दे कोई दिन कर्म नहीं समझता यहाँ पर राजमल जी ने अंतर प्रयोग के लिए बहुत सूक्ष्म बात की है क्या निरंतर प्रयोग की जो सूक्ष्म बात है तो इसी प्रकार के अंतरण संतर प्रयोग में जो कोई जीव आता है उसे समझ में आती है वरना उसको लगता है कि ये संदर्भ में क्या हो जाए ये संधि बात कैसे होगी जैसे दो पत्थर के बीच में एक लकीर होती है ये तो रूपी है क्योंकि इसका कलर दूसरा होता है काले पत्थर होता है तो सफेद लकीर होती है और आरत के सफेद पत्थर होता है तो ब्राउन या ब्लैक ब्लैक कलर के लेते होती है तो पता चलता है कि यहाँ संधि है तो यहाँ राग और ज्ञान के बीच में संधि कैसी है तो ज्ञान अंदर में उतनी सूक्ष्मता को धारण करता है तो इसका पता चलता है तो पता चलता है तो फिर कर सकता है तो पता ही नहीं करे तो फिर कैसे करेगा इतना ज्ञान सूक्ष्म से उसने आत्मनिर्भर की जरूरत लगे जरूरत रुचि पैदा हो और रुचि से अपना प्रयोजन के पत्थर आए तो ज्ञान सुख होता है तो शास्त्र पढ़ने से ज्ञान सुख हो जाता है ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत अभ्यास किया इसलिए ज्ञान सुख हो जाता है ऐसा नहीं बनता है ज्ञान लोगों को बनकर दिया है अनंत बार भूतकाल में अग्यारह नौ को खोज लिया है ज्ञान सूक्ष्म नहीं हुआ अंदर में सूक्ष्म संधि भाषित नहीं हुई और वेद ज्ञान नहीं हुआ कभी क्योंकि कर्म की प्राप्ति कभी नहीं हुई अब तक अभ्यास कुछ नहीं है वर्तमान में जो मनुष्य लोग अभ्यास करते हैं वो तो कुछ है वो तो मामूली बात है ग्यारह आदमी नौ किलो तक का पढ़ने पर भी अंदर में सूक्ष्म संदेह नहीं पकड़ने में आए तो काम होने वाला
वर्णन करता है तो इसी में चलता है
ऊपर आ ही जाता है और मुख्य जो आ जाते हैं ऐसा विज्ञान होगा तो विज्ञान नहीं होगा तो मुख्य का सवाल नहीं होगा। क्या कहा माने अति दुर्लभ निसंदेह रूप है, दुर्लभ संदेह रूप है उसका वाला योगदान कृष्ण का योगदान करते हैं। जल्दी लक्ष्य में नहीं आता है उसका वर्णन करते हैं। उसका वर्णन इस प्रकार है कि जो दृढ़ कर्म है नाना वर्ण आदि उद्योग चाहती है वो एक क्षेत्राधिक है आत्मा और उसका क्षेत्र हताश है अपने नहीं है। तो क्षेत्रा का मतलब क्या कि आकाश के विश्व देश में विश्व क्षेत्र में जीव रहा है उसी क्षेत्र में सुसर्ण का प्रदर्शन ले रहा है सर्व करना ले रहा है लेकिन कर्म में आत्मा नहीं आत्मा में कर्म का क्षेत्र अलग अलग है। यहाँ तो निमित्त की अपेक्षा से ये क्षेत्र अलग है आकाश का निमित्त है। यदि उसकी तो जीव से भिन्न करने की प्रकृति विचार में परिवर्तन होती है इसका विचार करने पर विश्वास आता है उनको जाते हैं और चिंता के भाव हो जाते हैं तो उसकी प्रकृति हो जाती है घर में जिनके परिणाम लग जाता है बार में क्रोध विचार हो जाता है तो विचार करने से तो काल में आता है विचार में तो उसकी प्रकृति आती है विश्वास आता है कारण से द्रवीकरण और प्रज्वल पिंड रूप है यद्यपि एक क्षेत्रा रूप है तथा भिन्न भिन्न प्रदेश है कर्म का प्रदेश भिन्न आत्मा का प्रदेश क्षेत्र परमाणु का क्षेत्र अलग है चैतन्य आत्मा का क्षेत्र अलग है उपादान रूप से अलग अलग क्षेत्र है तो नियमित रूप से एक क्षेत्र है तथा भिन्न भिन्न प्रदेश है और चेतन है बंधता है चिंता है परमाणु बंधता है खुल जाता है नया नया आता है पुराना चला जाता है ऐसा विचार करने पर भिन्नपना से प्रकृति उत्पन्न होती है। कर्म चिंतन के विषय में भिन्नपना से प्रकृति विचार का विषय होता है अनुभव ज्ञान का सीधा विषय वो दिखता नहीं दूसरा नौ कर्म जो शरीर मन वचन उसके भी उस प्रकार से विचारने तो जिन प्रकृति नहीं करती है ये भी सुंदर परमाणु है और हमारे आत्मा के संग्रह है चेतन चेतन हो सकते नहीं इसलिए उसके लिए जिन बना के प्रकृति हो सकते हैं। तीसरा भाव कर्म जो मनोराजना रूप परिणाम क्या कहा मनोराजना रूप परिणाम अशुद्ध चेतना है तो जगत की जगह ऐसा नहीं है अशुद्ध चेतना रूप परिणाम तो अशुद्ध परिणाम वर्तमान में जीव के साथ के परिणाम रूप है ऐसा अशुद्ध परिणाम जीव के साथ एक नेत्र रूप हो रहा है तथा अशुद्ध परिणाम के साथ वर्तमान में जीव जाते जाते रूप बनता है राज प्रेम करता है जी राज पर रूपा प्राप्त करता है ऐसा नहीं है जीव प्रेम करता है उसको व्याप्त रहता है। इस कारण इन परिणामों का जीव से दूर करने का अनुभव शक्ति है। ऐसी परिस्थिति में जीव को उससे भिन्न पड़ा करने का जो अनुभव करना है वो कठिन पड़ता है। तो कठिनाई को ज्ञानी जानते हैं कि किस प्रकार के भीतर में कठिनाई है तथा भी वो हो सकता है, तथा के करके जाते हैं परंतु गलत होते हैं। चारित्र गुण का प्रबंधन है, उनके चारित्र गुण का विचार किया है, तो उसमें उनकी एक न्याय से व्याप्ति है। अगर सर्वथा उनकी व्याप्ति नहीं होती तो अशुभ चेतना नहीं जुड़ जाती। अशुभ है लेकिन है तो चेतना, क्या अशुभ होने पर भी है तो चेतना, अशुभ चेतना जैसे शरीर की अवस्था है उसमें रोग आया शरीर का, तो है तो शरीर की अवस्था, शरीर के परमाणु जाते हैं उसमें जाते जाते दूसरे पर दूसरे चेतन के अंदर जाते हैं व्यापक होता है, लेकिन जीव तो व्यापक होता है, जीव का स्वभाव नहीं व्यापक होता है, लेकिन जीव तो व्यापक होता है। हाँ इतना विस्तार चल रहे थे रोचित आए तो और विस्तार कर
Thank you.